बच्चों आप सबको हमारी नमस्ते। आज फिर मीना आने वाली है ना, नई कहानी, नए गाने और एक नए खेल के साथ। और तो और कहानी में भी बड़ा रहस्य है।
रे, मैं तो लगता है सब पहले ही बता दूंगा।
तो बातें बंद और मीना की कहानी शुरू।
राजू अब जल्दी भी करना, गाने की तैयारी के लिए देरी हो रही है और पाशा भैया भी नाराज होंगे।
अरे मीना, ये आज इतनी जल्दी किस बात की?
अम्मा, वो शुक्रवार को हमारे स्कूल में शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं ना, मैं और 8वीं कक्षा के पाशा भैया उनके सामने मिलकर एक युगल गाना गाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।
चल, अब देरी नहीं हो रही है क्या?
हाँ हाँ, चल चल ना। अरे दीपू, तुम यहाँ कैसे?
तुमने सुना मीना, पाशा भैया ने सुनील के हाथ खबर भिजवाई है कि अब वो नहीं गाएंगे।
क्या, क्यों?
आगे कुछ नहीं बोला उसने। मैं तो पहले ही कहता था कुछ होगा, कुछ तो होगा।
तो बच्चों, पाशा सिर्फ उस दिन ही नहीं, अगले 2 दिन भी स्कूल नहीं आया। मीना बहुत परेशान थी। चलो देखें स्कूल में क्या हो रहा है।
पाशा भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना मीना।
अरे पर किसी ने पाशा भैया को ऐसा कहते खुद भी सुना है?
पर वो तो अब तक स्कूल नहीं आए। अब क्या करें मीना?
कुछ तो करना पड़ेगा, शुक्रवार में तो बस अब 2 ही दिन बाकी है। चलो चलकर उनसे मिल आते हैं।
कोई फायदा नहीं, वो किसी से नहीं मिलेगा।
क्यों, क्या हुआ मुरली?
वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता।
पर क्यों?
क्यों? क्योंकि हम अपनी बातें लड़कियों को नहीं बताते।
तो फिर मुझे बता दो।
राजू, हम ये बच्चों को भी नहीं बताते।
फिर तुम्हें कैसे मालूम?
मिल के आया हूँ मैं पाशा से। तुम्हारा गाना तो गया मीना।
लो, मुरली तो चला गया। पाशा को क्या हुआ ये तो खैर अब तक किसी को भी नहीं पता, पर हाँ, गांव भर में इधर 2-3 दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। मीना और दोस्तों ने किया तय, क्यों ना उसके घर ही चलकर पता लगाया जाए। वहाँ मिली पाशा की माँ।
चाची, पाशा भैया स्कूल क्यों नहीं आ रहे?
अरे मीना बेटी, पता नहीं इधर 2-3 दिनों से पीछे गौशाला में घुसा हुआ है। कहता है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ।
मुंह दिखाने? चाची, हम भैया से मिलाएं।
भैया से मिलाएं, हम अंदर जाएं।
हाँ हाँ बेटी, देखो तुम्हारे कहने से बाहर निकल आए तो।
इधर तो पाशा भैया कहीं नजर नहीं आ रहे।
पाशा भैया, पाशा भैया,
कहाँ हो तुम?
कहाँ हो तुम? पाशा हो गया गुम।
राजू, लगता है हमें सरपंच जी को खबर करनी पड़ेगी या फिर पुलिस को। अब तो वही पाशा भैया को ढूंढ सकते हैं।
अरे देखो पाशा भैया, अरे इन्होंने तो बंदर टोपी डाल रखी है मुंह पर।
पाशा भैया, इतनी गर्मी में पूरा मुंह बंदर टोपी से क्यों ढक रखा है?
मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता।
क्यों भैया?
तुम लोग जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।
पाशा, क्या हुआ है तुझे बताओ, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
पर मैं, अच्छा दीपू तुम इधर आओ, बस तुम हाँ और कोई नहीं।
अच्छा लो, आ गया।
ये देखो दीपू, मुझे क्या हो गया है, पर किसी से कहना मत। हाँ
बाबा रे, चलो मीना, चलो यहाँ से।
क्या बात है दीपू, क्या बात? अरे अरे पाशा भैया रुकिए। दीपू, क्या देखा तुमने?
कुछ मत पूछो मीना, भैया का मुंह, बाप रे।
दीपू ने मीना को क्या बताया वो तो फिलहाल मीना को ही मालूम है, पर परेशानी का हल किसी को भी नहीं मिला। सब जा पहुँचे टीचर जी के पास।
पाशा भैया को कुछ बहुत बुरा हो गया है बहन जी, लगता है कोई बीमारी हो गई है।
बीमारी? कैसी बीमारी?
लगता है वो भालू बनने वाले हैं।
भालू?
क्या कह रहे हो दीपू?
हाँ टीचर जी, मैंने अपनी आँखों से देखा, उनके चेहरे पर हल्के हल्के बाल आ रहे हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही है, उन्होंने बंदर टोपी भी पहनी हुई थी।
वो बहुत डरे हुए हैं। बहन जी अब क्या होगा?
परेशान मत हो बच्चों, पाशा से मैं बात करती हूँ, मैं मिलती हूँ उससे जाकर।
और फिर उसी शाम टीचर जी क्लास के कुछ बच्चों को लेकर पाशा के घर जा पहुँची। जब पाशा की माँ से टीचर ने पाशा के बारे में पूछा तो माँ हंस दी और बोली,
अब क्या बताऊँ बहन जी, बड़ा हो रहा है, मुँह पर मुहासे फूट रहे हैं, हल्के हल्के बाल भी निकले हैं, अब ये तो होगा ही, 4 दिन से गौशाला में छुपा बैठा है, आप ही समझाओ उसे, हमारी तो सुनता ही नहीं है।
पाशा पाशा पाशा, कहाँ हो भाई? देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खीर लाई हूँ, आओ मिलकर खाएंगे।
पाशा भैया,
अगर जल्दी नहीं आओगे तो मैं सारी खीर खा जाऊंगी, या फिर मोती मुरली और भोला को खिला दूंगी, देखो वो भी मेरे साथ ही आए हैं। मुझे मालूम है तुम्हें क्या हुआ है।
मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता बहन जी।
नहीं पाशा, ऐसी कोई बात नहीं, जो हुआ है उसमें डरने की कोई बात नहीं, ना ये कोई बीमारी है ना इसमें कोई खतरा है, सबके साथ होता है ऐसा।
तो मैं फिर आता हूँ।
पाशा भैया,
शाबाश पाशा, ये टोपी भी उतार दो।
वो अच्छा बहन जी, देखो मेरे चेहरे पर ये
फुंसियाँ, ये मुहासे, इसमें डर की बात नहीं, जब बच्चा बड़ा होता है तो शरीर में ऐसे बदलाव आते ही हैं, जैसे कि ये हल्के हल्के चेहरे पर उगते बाल, कुछ दिनों में तुम्हारी आवाज़ में भी बदलाव आएगा।
आवाज़?
हाँ पाशा, तुम्हारे पिताजी, सरपंच जी, माधो काका, जितने भी बड़े लोग हैं सबके चेहरे पर बाल, मूंछ, दाढ़ियाँ हैं, आवाज भी मोटी है, ये सब बड़े होने की निशानियां हैं, क्या समझे?
क्लास में मुझे देखकर बाकी बच्चे हंसेंगे।
क्यों हंसेंगे? क्यों मोती, क्यों भोला, तुम्हें पाशा को देखकर हंसी आई?
नहीं तो बहन जी, अब तो हमें भी पता है कि ये सबके साथ होगा।
शाबाश बच्चों, बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते ही ये बदलाव आते ही हैं, जैसे कि कुछ बच्चों के चेहरे पे मुहासे आते हैं, कुछ के चेहरे पे हल्के हल्के बाल, कहीं किसी की आवाज में भारी बनाता है, पर किसी भी हालत में घबराने की इसमें कोई बात नहीं, और इसीलिए श्रीमान पाशा कल से आना शुरू कर दो क्लास और मिलाओ फिर पुराने दोस्तों से हाथ।
बहन जी की बात पाशा को समझ आ गई और मोती मुरली और भोला को भी, और अगले ही दिन पाशा आ पहुंचा अपनी क्लास में।
अब क्या करें मीना, पाशा भैया तो शायद अब कभी नहीं आएंगे।
पाशा भैया रोज आएंगे।
बहन जी आ गई, और देखो साथ में पाशा भैया भी हैं। बहन जी, पाशा भैया को क्या हुआ था?
ना कोई बीमारी ना कोई तकलीफ, बस इतना ही जो पाशा की उम्र में हर बच्चे के साथ होता है, कई बच्चों के मुहासे आएंगे और सभी लड़कों के आएगी दाढ़ी मूंछ।
हमारे साथ भी? मतलब
जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पाशा की उम्र में आते ही उनके अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, आवाज़ में भारीपन आता है, चेहरे पर हल्के हल्के बाल आ सकते हैं।
पाशा भैया, तुमने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया था?
शुरू में तो मैं बहुत डर गया था, फिर टीचर जी ने समझाया, मेरी ही उम्र में ऐसा सब बच्चों के साथ होता है, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सभी के साथ ऐसा हुआ है, सभी की आवाज़ बदल गई है, अब मुझे कोई डर नहीं।
तो क्या मेरे भी हल्के हल्के बाल आएंगे, आवाज़ बदलेगी, मुहासे होंगे?
और मेरी भी?
सभी की?
नहीं रे, आवाज सिर्फ लड़कों की बदलेगी, लड़कियों की नहीं।
तो अब आप गाओगे ना भैया?
हाँ हाँ, पाशा जरूर गाएगा, खूब जमेगी मीना और पाशा की जुगलबंदी। क्यों पाशा, क्यों मीना?
हाँ टीचर जी, खूब जमेगी।
मीना की बहन जी ने आज कितनी अच्छी बात बताई, भाई बदलाव ही तो जिंदगी का नाम है, और हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बड़ों से बात करके इसे समझना चाहिए, तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। तो फिर दोस्तों, चले मीना और उसके दोस्तों के साथ एक नई कविता सुनने।
समय कभी ना एक सा भैया,
समय बदलता जाए रे भैया।
अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता है।
मीना और मिट्ठू की इस नई कविता को चलो संगीत के साथ सुने।
समय
दोस्तों अब वक्त हो गया है चलकर देखने का कि मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं।
प्यारे बच्चों, आज हम फिर खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़।
मजा आया।
तो चलो बूझो, पहली कड़ी है मीठी थी आवाज उनकी, तेज था दिमाग, भारत की कोकिला कह करते हैं उन्हें याद।
कुछ समझ में नहीं आया बहन जी, दूसरी कड़ी दीजिए ना।
जरूर, दूसरी कड़ी है उन्होंने कई कविताएं लिखी थी, कई पुस्तकें उनकी छपी थी।
डॉक्टर बहन जी अच्छी कविता लिखती हैं। जब मेरा पेट दर्द हो रहा था ना, तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर कविता सुनाई थी।
जरूर, पर डॉक्टर बहन जी भारत की कोकिला नहीं कहलाती थी। चलो तीसरी कड़ी सुनो, स्वतंत्रता सेनानी थी वो, गांधी जी की सिपाही थी वो।
मुझे याद आ रहा है, मैंने उनके बारे में सुना था बाबूजी से, जब वो मुझे गांधी जी की कहानी सुना रहे थे। आहा, उनका नाम है सरोजनी नायडू। बहन जी, मुझे तो वैसे भी कविताएं पढ़ने में बहुत मजा आता है।
अरे वाह कृष्णा, शाबाश। कृष्णा को केवल कविताएं पढ़ने का ही नहीं बल्कि कविताएं लिखने का भी शौक है। और एक खास बात भी बताऊं सरोजनी नायडू के बारे में, वो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी और वो भी उत्तर प्रदेश की। है ना मजेदार बात बच्चों?
वाह बहन जी, बहुत मजेदार।
तो इन मजेदार बातों के बाद फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।
सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल।